हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लेकिन उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दानव को अमन ने नहीं अपितु परीलोक से आई परी सोनल ने मारा था। तब काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु के सामने कहा, आपको इस बार मेरी मदद करनी ही होगी, आपको मुझ पर रहम करना ही होगा। आज मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ, बहुत जल्द मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और काली शक्तियों का महारक्षक बन जाऊंगा। बस आपको मेरी मदद करनी होगी गुरुजी, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। आप नहीं जानते मैं इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जोश में होश खो बैठा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे उस काले साये के साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई थी कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। बस एक बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी, कहकर काली शक्तियों का मालिक अमित खून के आंसू रो दिया। और अब वो अपने महागुरु, काली शक्तियों के महागुरु के सामने था। महागुरु शुरू से ही अमित को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जंगलों में काली शक्तियों की औरत को सजा भुगतने के बाद अमित का पालन पोषण उन्हीं ने किया था। अमित के साथ उनका एक अलग ही लगाव था, इसीलिए वे उसे परेशान नहीं देख सकते थे। उन्होंने अमित से कहा, हम सिर्फ एक बार तुम्हारी मदद करेंगे और इस बार हमें तुम्हें जो शक्तियां देनी होंगी वो अपने शरीर के द्वारा देनी होंगी, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर काफी कमजोर हो चुका है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो हमें अपनी कुछ शक्तियां तुम्हें देनी होंगी, उसके बाद ही तुम ठीक हो पाओगे। अब तुम अपना दायां हाथ आगे करो, कहकर उन्होंने अमित का दायां हाथ आगे करवा दिया और खुद उसका दायां हाथ पकड़कर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे काली शक्तियों के महागुरु के शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी सीधे काली शक्तियों के मालिक अमित के शरीर में जाने लगी। जैसे जैसे अमित के शरीर में वो रोशनी जा रही थी, उसकी शक्तियां दोगुनी, तीनगुनी, चारगुनी बढ़ती जा रही थीं। इस बार अमित को कोई सामान्य शक्तियां नहीं मिली थीं, इस बार उसे सीधे अपने महागुरु के शरीर की शक्तियां मिली थीं, जो किसी भी लिहाज से काफी ज्यादा ताकतवर थीं। कुछ ही देर में अमित को शक्तियां मिल चुकी थीं। दरअसल उसे कहीं ज्यादा शक्तियां मिल चुकी थीं, इसीलिए अमित अब खुद को काफी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा। उसका महागुरु उसकी ओर देखकर बोला, अब हमने तुम्हें आखिरी मौका दिया है। अगर तुम इस बार भी तिलिस्मी पत्थर हासिल नहीं कर पाए, तुम मजबूर होकर हमें खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लेनी होगी। और तुम जानते हो कि हम तुम्हें अपने बच्चों की तरह चाहते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम हमें इस पाप को करने से रोकोगे और तुम वो तिलिस्मी पत्थर जरूर हासिल करोगे, कहकर काली शक्तियों के महागुरु वहां से गायब हो गए और अमित नई शक्तियों के साथ खड़ा हो गया। तभी उसे याद आया कि आज उसका हल्दी का फंक्शन था। काली शक्तियों के मालिक अमित ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कपड़े बदलकर अमन के बंगले के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही अमित अपने फंक्शन में गया, वो वहां की सजावट देखकर हैरान रह गया। उसने धरा को हल्के पीले रंग के सूट में सजाया हुआ देखा, जिसमें धरा की खूबसूरती निखर रही थी। धरा अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो पूरी तरह से काले साये मल्लिका के वश में थी। मल्लिका ने जैसे ही अमित को देखा, वो हैरान हो गई, क्योंकि अब अमित पहले से भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं मल्लिका ने ये बात नोटिस कर ली थी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ दूर से ही अमित को देख सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने अमित के करीब जाकर बात करने की कोशिश की तो काली शक्तियों का मालिक अमित उस पर गुस्सा जरूर उतारेगा। तभी करिश्मा जी अपने बेटे अमन के पास आईं और बोली, बेटा तारा को बहुत देर हो गई है, अभी तक वो फंक्शन में नहीं आई है। तुम एक काम करो, जाकर देखो कि वो तैयार हुई है कि नहीं, और साथ ही साथ तुम भी तैयार होकर आ जाओ। मैं आज खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को हल्दी लगाऊंगी। करिश्मा जी की बात सुनकर अमित हल्का सा शर्मा गया और बोला, ठीक है माँ, मैं जाकर देख कर आता ही। लेकिन इससे पहले कि अमन अंदर जाता, उसे सोनल परी के साथ तारा परी आई हुई दिखाई दी। तारा परी येल्लो रंग के परीलोक के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में आए हुए सभी मेहमानों की नजरें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि दानव को अमन ने नहीं अपितु
परीलोक से आई परी सोनल ने मारा था। तब काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु के सामने कहा, आपको इस बार मेरी मदद करनी ही होगी, आपको मुझ पर रहम करना ही होगा। आज मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ, बहुत जल्द मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और काली शक्तियों का महारक्षक बन जाऊंगा। बस आपको मेरी मदद करनी होगी गुरुजी, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। आप नहीं जानते मैं इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जोश में होश खो बैठा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे उस काले साये के साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई थी कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। बस एक बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी, कहकर काली शक्तियों का मालिक अमित खून के आंसू रो दिया और अब वो अपने महागुरु, काली शक्तियों के महागुरु के सामने था। महागुरु शुरू से ही अमित को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जंगलों में काली शक्तियों की औरत को सजा भुगतने के बाद अमित का पालन पोषण उन्हीं ने किया था। अमित के साथ उनका एक अलग ही लगाव था, इसीलिए वे उसे परेशान नहीं देख सकते थे। उन्होंने अमित से कहा, हम सिर्फ एक बार तुम्हारी मदद करेंगे और इस बार हमें तुम्हें जो शक्तियां देनी होंगी वो अपने शरीर के द्वारा देनी होंगी, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर काफी कमजोर हो चुका है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो हमें अपनी कुछ शक्तियां तुम्हें देनी होंगी, उसके बाद ही तुम ठीक हो पाओगे। अब तुम अपना दायां हाथ आगे करो, कहकर उन्होंने अमित का दायां हाथ आगे करवा दिया और खुद उसका दायां हाथ पकड़कर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे काली शक्तियों के महागुरु के शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी सीधे काली शक्तियों के मालिक अमित के शरीर में जाने लगी। जैसे जैसे अमित के शरीर में वो रोशनी जा रही थी, उसकी शक्तियां दोगुनी, तीनगुनी, चारगुनी बढ़ती जा रही थीं। इस बार अमित को कोई सामान्य शक्तियां नहीं मिली थीं, इस बार उसे सीधे अपने महागुरु के शरीर की शक्तियां मिली थीं, जो किसी भी लिहाज से काफी ज्यादा ताकतवर थीं। कुछ ही देर में अमित को शक्तियां मिल चुकी थीं। दरअसल उसे कहीं ज्यादा शक्तियां मिल चुकी थीं, इसीलिए अमित अब खुद को काफी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा। उसका महागुरु उसकी ओर देखकर बोला, अब हमने तुम्हें आखिरी मौका दिया है, अगर तुम इस बार भी तिलिस्मी पत्थर हासिल नहीं कर पाए तो मजबूर होकर हमें खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लेनी होगी, और तुम जानते हो कि हम तुम्हें अपने बच्चों की तरह चाहते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम हमें इस पाप को करने से रोकोगे और तुम वो तिलिस्मी पत्थर जरूर हासिल करोगे, कहकर काली शक्तियों के महागुरु वहां से गायब हो गए और अमित नई शक्तियों के साथ खड़ा हो गया। तभी उसे याद आया कि आज उसका हल्दी का फंक्शन था। काली शक्तियों के मालिक अमित ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कपड़े बदलकर अमन के बंगले के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही अमित अपने फंक्शन में गया, वो वहां की सजावट देखकर हैरान रह गया। उसने धरा को हल्के पीले रंग के सूट में सजाया हुआ देखा, जिसमें धरा की खूबसूरती निखर रही थी। धरा अपना सिर झुकाए बैठी थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो पूरी तरह से काले साये मल्लिका के वश में थी। मल्लिका ने जैसे ही अमित को देखा, वो हैरान हो गई, क्योंकि अब अमित पहले से भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं मल्लिका ने ये बात नोटिस कर ली थी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ दूर से ही अमित को देख सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने अमित के करीब जाकर बात करने की कोशिश की तो काली शक्तियों का मालिक अमित उस पर गुस्सा जरूर उतारेगा। तभी करिश्मा जी अपने बेटे अमन के पास आईं और बोली, बेटा, तारा को बहुत देर हो गई है, अभी तक वो फंक्शन में नहीं आई है। तुम एक काम करो, जाकर देखो कि वो तैयार हुई है कि नहीं, और साथ ही साथ तुम भी तैयार होकर आ जाओ। मैं आज खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को हल्दी लगाऊंगी। करिश्मा जी की बात सुनकर अमित हल्का सा शर्मा गया और बोला, ठीक है माँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन इससे पहले कि अमन अंदर जाता, उसे सोनल परी के साथ तारा परी आई हुई दिखाई दी। तारा परी येल्लो रंग के परीलोक के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में आए हुए सभी मेहमानों की नजरें सिर्फ तारा परी पर ही ठहर गई थी। धरा की ओर कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि धरा एक साधारण इंसान थी, लेकिन तारा परी एक राजकुमारी थी, और पीले रंग के कपड़ों में उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। जो कोई भी उसे देख रहा था उसकी खूबसूरती में खो रहा था। वहीं काली शक्तियों के मालिक अमित की नजर जैसे ही तारा पर पड़ी, वो भी अपनी पलकें झपकना भूल गया। साथ ही साथ उसे
तारा का मारा हुआ चांटा याद आ गया कि किस तरह से तारा ने उसके मुंह पर तमाचा मारा था, और उसके बाद उसने अपनी निराशा में मल्लिका के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लिया था। अब उसने सोच लिया था कि शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद चाहे उसे तारा को किडनैप ही क्यों ना करना पड़े, वो उसके साथ रिश्ता बनाकर रहेगा, क्योंकि तारा ने उस पर हाथ उठाकर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। अब वो हर हाल में तारा का शरीर पाना चाहता था। वहीं अमन की नजर जैसे ही अपनी खूबसूरत पत्नी तारा पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। लेकिन तारा के चेहरे की उदासी अमन से छिपी नहीं रही। तभी अमन को एहसास हुआ कि तारा आखिरकार उदास क्यों है। अमन जल्दी से तारा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसके पास खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ है जान, तुम्हारे चेहरे पर यह किस तरह की उदासी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूँ। लेकिन तारा ने अमन की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अब तो अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बोला, तुम नाराज हो मुझसे? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें देखने के बाद मैं अपने होश हवास पूरी तरह से खो बैठता हूँ, और इस बार शायद मैंने कुछ
ऐसा कहकर करिश्मा जी ने तारा को समझा दिया। लेकिन तारा अब उन्हें अपने मन की बात नहीं बता पा रही थी, इसीलिए वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। धीरे धीरे तारा और धरा को एक जगह बिठाया गया। अमन और अमित अलग अलग बैठे हुए थे। धरा के पास बैठकर तारा को बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं धरा की फोटोकॉपी तारा थी। तारा के पास जो भी समझ, जो भी एहसास थे, वो सिर्फ धरा की वजह से थे। भले ही धरा इस वक्त अपने वश में नहीं थी, लेकिन तारा अपने होशो हवास में थी। उसे अजीब लग रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो धरा को अभी ठीक कर दे, क्योंकि तारा जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि धरा क्या करने वाली है। अब दोनों दुल्हनों को स्टेज पर बिठाया गया, लेकिन धरा की ओर कोई नहीं देख रहा था। सबकी नज़र अगर किसी पर ठहर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि तारा पर ही थी। काली शक्तियों का मालिक अमित, जिसने एक बार भी धरा की ओर नहीं देखा था, उसकी नज़र अगर कहीं टिकी हुई थी तो वो सिर्फ तारा परी पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि तारा ने जिस तरह से उसे चांटा मारा था और जिस तरह से उसने तारा के भीगे बदन और उसकी खूबसूरती को देखा था, तब से तारा के लिए उसके मन में एक अलग ही तरह की लालसा जाग चुकी थी। जल्दी ही बड़े बड़े थाल हल्दी के तैयार किए गए। तभी तारा ने सोनल परी की ओर इशारा कर दिया। आज सोनल परी को वो प्लान एग्जीक्यूट करना था जो तारा ने उसे समझाया था। उनके प्लान के अनुसार तारा और सोनल परी को अमन और अमित को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना था, ताकि अमरेंद्र जी अपनी आंखों से देख लें और अमित ने जो अपनी अच्छाई का पर्दा उनकी आंखों पर डाला है वो पूरी तरह से हट जाए। तो कहीं ना कहीं वे दोनों इसी तैयारी में थीं। लेकिन सोनल परी सोच रही थी कि तभी सोनल परी का ध्यान एंट्री गेट की ओर गया, जहां कई बॉडीगार्ड के बीच से अक्षत खुराना आ रहा था। अक्षत को देखकर सोनल परी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो मन ही मन में अक्षत को चाहने लगी थी। लेकिन तारा के साथ हुए हादसे की वजह से उसने अपने मन को समझ लिया था। लेकिन अब अक्षत के सामने आ जाने पर उसके दिल की हालत एक बार फिर खराब होने लगी, और जो भी काम तारा परी ने उसे दिया था अब वो उसे काम पूरी तरह से भूल चुकी थी, क्योंकि उसके सामने अब सिर्फ अक्षत ही दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ जिस तरह से तारा और अमन एक साथ कमरे में थे, उनकी आवाज़ सोनल परी ने सुनी थी, तो उसका मन अब अक्षत के साथ प्यार करने को कर रहा था। जैसे ही अक्षत वहां आया और उसकी नज़र सोनल परी पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया और अपना चश्मा उतारकर साइड में रख दिया। लेकिन तभी अमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अक्षत की ओर देखकर बोला, वेलकम टू द पार्टी मिस्टर अक्षत खुराना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पार्टी में आ जाएंगे, मुझे लगता था कि अभी भी आपका वो राइवलपन चल रहा होगा। अक्षत ने कहा, यहाँ पार्टी में मैं अपनी खास चीज़ के लिए आया हूँ, और अक्षत खुराना मरते मरते जाएगा लेकिन अपनी खास चीज़ को कभी किसी के हाथों में नहीं जाने देगा, मिस्टर अमन सिंह राठौर। जैसे ही अक्षत ने अपनी किसी खास चीज़ का जिक्र किया, अमन हैरान हो गया और सोचने लगा कि उनकी पार्टी में अक्षत की क्या खास चीज़ हो सकती है। लेकिन तभी अमन ने अक्षत की नज़रों का पीछा किया और उसकी नज़रें सोनल परी पर ठहर गईं। तब अमन को समझ आ गया कि अक्षत किस खास चीज़ की बात कर रहा था। अमन ने अपना हाथ अक्षत के कंधे पर रखते हुए कहा, वो तो तुम हमारी शादी की वेडिंग प्लानर पर नज़र रखे हुए हो और तुम उसे अपनी खास चीज़ कह रहे हो। तभी अक्षत को गुस्सा आ गया और वो बोला, उसे वेडिंग प्लानर कहने की सोचना भी मत। क्या अमन सोनल परी को अक्षत के साथ जाने देगा? क्या तारा परी अमित का मुकाबला कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।